पूर्व में मैंने आपको पर्यावरणीय संकट का विभिन्न प्रकार के बिंदु को बताया है, और अब मैं आपको पर्यावरण प्रबंध योजना के बारे में बताने जा रही हूँ। ये जो प्रबंध योजना है वो की जानी अत्यंत आवश्यक है। आप जानते हैं कि जहाँ समस्या होती है उस समस्या का समाधान हम अवश्य खोजते हैं। तो जो पर्यावरणिक प्रबंध योजना है इसमें हम दो प्रकार के संरक्षण की व्यवस्था करते हैं। सबसे पहली बात आती है वैज्ञानिकों द्वारा, जो वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं हैं इनके निरीक्षण से जो भी किसी प्रकार की समस्या आने वाली होती है उसका समाधान खोजा जाता है और उसकी भविष्यवाणी कर दी जाती है जिससे सुरक्षा के उपाय खोजे जा सकें। इसके लिए इस समय प्रभावशाली योजनाएं भी तैयार कर चुकी हो किया जा चुका है। दूसरे नंबर पे आपका आता है कि अगर संकट कभी आता है तो राहत कार्यों की व्यवस्था प्रबंध इत्यादि तुरंत किया जाना चाहिए जिससे जो संकटग्रस्त व्यक्ति हैं उनको सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जा सके और इनके खाने पीने इनकी सुविधा की व्यवस्था अवश्य की जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अतिरिक्त अंतरिक्ष के पिंडों से संकट उत्पन्न होता है तो उसमें वैज्ञानिक बताते हैं कि अंतरिक्ष में जो पिंड हैं जिनसे पृथ्वी टकराती है और उससे तमाम तरह की समस्याएं अंतरिक्ष के पिंडों के संकट की समस्याएं आने लगती हैं। तो इसमें पृथ्वी का जो कक्ष होता है धीरे धीरे अपने स्थान से खिसकता जाता है जिसके कारण अन्य पिंडों से उसका टकराव होता है और इन टकरावों के कारण ही पृथ्वी पर अधिक मात्रा में धूल का हो जाना दिखाई देता है या समुद्र तल में परिवर्तन होता है, जलवायु तथा मौसम परिवर्तन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तेज आंधी आती है, बहुत सारी सी इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन जो ज्योतिष विज्ञानी हैं ज्योतिषी लोग हैं वो इस प्रकार की घटनाओं के संबंध में कभी कभी भविष्यवाणी भी कर देते हैं परंतु इन घटनाओं के लिए हम कुछ नहीं कर पाते। और दूसरे नंबर पे आपका आता है मानव द्वारा उत्पन्न संकट तथा प्रकोप। मैंने आपको फिगर बना के भेज दिया है। तो जो पर्यावरण का विघटन होता है वो अधिकतर मानव के कारण ही होता है, अर्थात समस्या हम ही उत्पन्न कर रहे हैं और दिया गया है हम ही को सुविधा पूर्वक चलाने के लिए और हम ही से सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो जो हम लोगों के कारण मानव के कारण संकट होता है जो क्षति होती है उसकी पूर्ति करना असंभव है। मानव क्रिया द्वारा जो संकट उत्पन्न होते हैं इनकी प्रकृति दोनों प्रकार की होती है, कभी अचानक हो जाती है और कभी मनुष्य को उसका बोध हो जाता है। इसको हमने तीन भागों में बांटा है। जैसे पहला आपका आता है भौतिक संकट। भौतिक संकट के अंतर्गत भूकंप, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव ये सब आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपका आता है रासायनिक संकट। रासायनिक संकट के अंतर्गत कारखानों में टैंकों में जहरीली गैस का रिसाव होना, आपने भोपाल गैस कांड सुना होगा तो ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। कारखानों में गैसों का उत्पन्न होने के बाद वाहनों से वायु प्रदूषण, अणुशक्ति का प्रयोग होना, उसके बाद समुद्र में तेल के जहाज का डूबना या आग लग जाना आदि ये सारी चीजें। फिर आपका आता है सामाजिक संकट, जैसे जनसंख्या वृद्धि हो गई, धार्मिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है और आर्थिक मूल्यों को महत्व दिया जा रहा है। सब आप देख रहे हैं इस समय सब कुछ चल भी रहा है समाज में। तो ये जो इसके आप दुष्परिणाम देख रहे हैं ये पर्यावरण के प्रकोप के कारण ही हम उसको भुगत रहे हैं ये सारी चीजें। फिर युद्ध के समय परमाणु उपयोग का उपयोग, जैसे हिरोशिमा का मुख्य उदाहरण है, हिरोशिमा नागासाकी जापान में हुआ था जो उसको बात की जा रही है। तो और कभी कभी जो बहुमंजिली इमारतें बनाई जाती हैं ना उन बहुमंजिली इमारतों से भी भवनों के निर्माण कार्यों से भी भूचाल आ जाता है। तो इस तरह से मनुष्य सामाजिक और भौतिक पर्यावरण से हम जो चीज पाए हैं हमें जो चीज वस्तुएं मिली हैं उनसे हमें संकट भी उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमारे कृत्यों के ही कारण। आज मानव क्रियाओं से उत्पन्न संकटों की वृद्धि के संबंध में जो सामाजिक प्रक्रिया है, इसको कम करने और राहत कार्यों के लिए तत्काल व्यवस्था को प्रबंध राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुरंत हो जाता है किया जा रहा है। अनेक राष्ट्र स्वयंसेवी संगठन इन राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। इनसे पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करना, पुनर्वास की व्यवस्था करना, पुनर्वास शब्द आप समझ रहे होंगे, उनको दोबारा रहने के लिए, निवास के लिए स्थान बनाना, आवास बनाना और व्यवस्था करना, उनके कपड़े, खाने, दवाओं, डॉक्टरों, नर्सों तथा इंजीनियरों की तत्काल व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है। कुछ ऐसे भी समाज विरोधी तत्व हैं जो कि इसमें फायदा भी उठाते हैं, जैसे कुछ लोग डकैती करते हैं, लूट करते हैं, पीड़ितों के सामान को उठाते हैं। ये गलत बात है, ये सब चीज़ें निहायत गलत हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। पर्यावरण विघटन होता क्यों है? पर्यावरण विघटन जो है उसके कुछ कारण हैं, जैसे सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि धार्मिक, आर्थिक और दार्शनिक कारण। अगर इसको आप गहराई से समझें तो धार्मिक कारण, हम किसी भी चीज़ में जब शुद्धता में, निहायत शुद्ध स्वार्थ में चले जाते हैं और मार काट अति इत्यादि करने लगते हैं, ये सारी चीज़ें। आर्थिक कारण, हमें बहुत पैसा चाहिए, हम आराम से रहेंगे, हम, मैं लग्जीरियस हूँ तो आराम से रहेंगे कि दुष्परिणाम दूसरे पे भी तो पड़ेंगे, ये चीज़। दार्शनिक कारण, बहुत जो हमारा नज़रिया है, हमारा नज़रिया बहुत महीन होना चाहिए, हम देखें कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य से दूसरों को परेशानी ना हो, इन चीज़ों को। दूसरे नंबर पे बताती हूँ मैं आपको, वनों को काटना। कृषि के लिए जो भूमि तैयार की जाती है, इसके लिए वनों को काटा जा रहा है। आप देख रहे हैं तमाम फ्लैट बन रहे हैं। हम अपनी लग्जरी के लिए, अपने आराम के लिए, अपने आर्थिक सशक्तिकरण को दिखाने के लिए अलग अलग घरों में रहेंगे, तो ये भी तो वनों को काट के ही हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं ना, ये चीज़। अगली बात है कृषि का विकास। अधिक उपज के लिए रासायनिक खादों को प्रयोग करना और कीटनाशक दवाओं का उपयोग करना, मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि अथवा विस्फोट। जनसंख्या वृद्धि की आवश्यकता के लिए हम जो प्राकृतिक संसाधनों को अधिक से अधिक उपयोग में ले रहे हैं, जबकि ये केवल सीमित संसाधन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जब कम चीज़ रहेगी, गुब्बारे में अधिक हवा भरी जाएगी तो फटेगा ही वो, ये चीज़। औद्योगिक विकास से भी पर्यावरण में विघटन और प्रदूषण हो रहा है। आप जान रहे हैं चमड़े की फैक्ट्री है, बूचड़ खाना है, ये जितनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, ये हमको अति सर्वत्र वर्जित प्रदूषण की ओर ले जा रही हैं। फिर शहरीकरण से अधिक धुआं, धूल उत्पन्न होने से वायु प्रदूषण, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भी प्रदूषण इत्यादि करते हैं, आप जानते ही हैं ये सारी चीज़ें। हम अपने निहित स्वार्थ के लिए दूसरी चीज़ों को नष्ट करते जा रहे हैं, ये सब प्रदूषण का कारण है। फिर आधुनिक उत्पादन तकनीकी, मतलब विशाल बांधों का निर्माण करना, बहुमंजिले मकानों का निर्माण करना, जलाशय तैयार करने से पृथ्वी की चट्टानों में असंतुलन होने से संकट उत्पन्न हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अब पर्यावरण तथा समाज में अंत प्रक्रिया मुख्य रूप से सामाजिक तथा राजनैतिक प्रणाली पर निर्भर करती है, जिससे जो पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पूंजीवादी और समाजवादी विचारधाराएं जितनी भी हैं पर्यावरण की समस्याओं को विभिन्न ढंग से देखते हैं, इसका अर्थापन करते हैं। समाजवादी का मुख्य लक्ष्य समाज को महत्व देना, इसी संदर्भ में प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण की समस्याओं का अर्थापन करते हैं। पर्यावरण की जो गुणवत्ता है, इसको बनाए रखने के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत हम निम्नांकित कारणों को, कार्यक्रमों को सम्मिलित करते हैं, जैसे पर्यावरण के कुप्रभावों से सुरक्षा करते हैं, घटनाओं को रोकने, संकटों को तथा प्रकोप के लिए, इनसे बचने के लिए राहत योजना तैयार करते हैं, संकट से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास योजना, और आवश्यक संरक्षण एवं सुरक्षा के कार्यक्रम को लागू करने के बाद उनकी प्रभावशीलता का आकलन करके पृष्ठ पोषण करना, ये सारी चीजें। अब हम चलते हैं स्थानीय तथा व्यापक पर्यावरण क्या है। स्थानीय और व्यापक पर शिक्षा जो आपकी है, इस शिक्षा में स्थानीय परिवेश का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चा अपने